आकर के राजा वज्रजंग बने, उसके बाद भोग भूमि में आर्य बने, वहां से सम्यक दर्शन को ग्रहण करके पुनः श्रीधर देव बने, पुनः राजा सुविधि बने मध्यलोक में आकर, और सातवें भाव में वे अच्युतेंद्र बने, माने सोलहवें स्वर्ग के इंद्र बने। और कल हमने आपको बताया था कि बहुत आनंद मंगल के साथ वहां पर दिन व्यतीत हो रहे थे। 22 सागर की आयु तक उस अच्युतेंद्र ने वहां सुख को भोगा, और पूर्व जन्म की पत्नी जो श्रीमती थी वे आकर के प्रीतिंकर देव वे प्रतींद्र हो गए। इसी अच्युत स्वर्ग में 16वें स्वर्ग में प्रतींद्र हो गए, क्योंकि इससे पहले भाव में वे राजा सुविधि के पुत्र केशव हुए थे, और उस पुत्र ने भी पिता की दीक्षा के बाद स्वयं दीक्षा धारण करके सम्यक दर्शन के साथ समाधि मरण किया, और 16वें स्वर्ग में वे भी प्रतींद्र हो गए। वहां पहुंचकर दोनों ने अपने पूर्व भावों को जान लिया, और बड़े ही प्रेम के साथ अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना करते हुए दिवस निकाला। और इस ऋषभ देव चरितम के अंदर पूज्य गण्य ज्ञानमती माताई ने ये बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, ऋषभ देव चरितम, इसी की व्याख्यान माला चल रही है। संस्कृत में ग्रंथ है, बहुत सरल संस्कृत है, फिर भी इसकी ब्राह्मी नाम की टीका हिंदी में है, और उसके अंदर प्रसंगोपात अनेक प्रकार के वर्णन है कि स्वर्ग में जीव कैसे जाता है, पुण्य को एकत्रित करके और सम्यक दर्शन को दृढ़ करके जो मनुष्य दीक्षा आदि धारण करते हैं वे उच्च कोटि के देवता बनते हैं। तो यहाँ पर भी ये अच्युतेंद्र बने राजा सुविधि, और वहां से अपनी आयु को पूर्ण करके पुनः मध्यलोक में आते हैं। जो हमने 10 भाव भगवान के शुरू किए थे बताने राजा महाबल से, उसके बाद हमेशा वो कभी देवता बनते रहे, कभी मनुष्य बने, कभी देवता बने, कभी मनुष्य बने। केवल एक बार उनको भोग भूमि में आर्य के रूप में जन्म लेने का अवसर आया, वहां पर भी उन्होंने सम्यक दर्शन को धारण कर लिया, तो जाकर के देवता अच्युत इंद्र बन गए थे। आज अष्टम अवतार की ओर मैं चलती हूँ, केवल इसको शुरू करूंगी, कोई बात नहीं। आज ये व्याख्यान माला है, आज भगवान का मोक्ष कल्याणक हुआ है, आज हम इस ऋषभ देव चरितम के विषय को परिपूर्ण कर सकते थे, लेकिन अभी हम आपको 2-3 भावों में और ले चलेंगे। आज अष्टम अवतार का प्रारंभीकरण कर देती हूँ। सम चतुष्क संस्थानम दधानो वज्रनाभिभाग तस्मै नमोस्तुमि नित्यम वज्रनाभि जिनेशिने। अर्थात वज्र की नाभि जिनके थी, जो सम चतुरस्र संस्थान से सहित तथा वज्र के समान नाभि को धारण करने वाले हैं, कहते हैं कि नाभि के अंदर प्राण होते हैं, और वज्र के समान नाभि कि जिनकी नाभि को कोई छेद ही ना सके, कोई प्राण ना ले सके, ऐसे अकाल मृत्यु से रहित वज्र की नाभि को धारण करने वाले जो हैं, ऐसे उन वज्र नाभि जिनेश को मेरा नित्य ही नमस्कार हो। अर्थात जो वज्र के समान नाभि से सुशोभित हैं, और सम चतुरस्र संस्थान यानी पूरा शरीर एकदम एप्रोप्रिएट, जहां जितना उसका अंगोपांग का नाप होना चाहिए उसी तरह से एकदम सुंदर, क्योंकि जब भगवान जन्म लेते हैं ना तो भगवान के समान सुंदर उस समय उस धरती पर कोई नहीं रहता। और पूर्व भाव से अब तो ये वज्र नाभि चक्रवर्ती की पर्याय में 16 कारण भावना भा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले हैं। ऐसी प्रकृति कि जिस प्रकृति को रिजर्व में रहते हुए भी पुण्य के कारण वो जिस माँ के गर्भ में आएंगे, उस माँ के भी अंदर इतनी सद्बुद्धि, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि आ जाएगी कि वे देवियों के द्वारा चाहे कैसे ही गूढ़ प्रश्न, अटपटे प्रश्न पूछे जाएं, सब का उत्तर देने में माँ जो सक्षम होती है वो उस तीर्थंकर पुत्र के कारण होती है। ऐसे भगवान ऋषभ देव को हम बारंबार नमन करते हैं। यहाँ वज्रनाभि से नाम से तीर्थंकर भगवान का भी स्तवन किया गया है। कभी तो वज्रनाभि नाम का उनका आठवां अवतार चल रहा है और दसवें भाव में साक्षात तीर्थंकर बनने वाले हैं। साक्षात वज्र के समान उनकी नाभि रहेगी, साक्षात एकदम समचतुरस्र संस्थान वाले होंगे। इसीलिए उन भगवान के लिए जब स्तुति करते हैं तो पढ़ते हैं, नाम तिहारा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। भगवान की प्रतिमा का स्तवन करते हैं। हे भगवान, जब आपकी प्रतिमा पर ही नयन नहीं टिकते हैं तो आपने जब साक्षात जन्म लिया होगा आपके रूप को देखने के लिए तो सौधर्मिंद्र कितना लालायित रहता है। ये दो पंक्तियां हमने आज से लगभग 40 साल पहले बनाई और पूरे भजन को बनाया। दो पंक्तियां तो लोगों ने ले ली और अपने अपने भावों को अलग अलग संजोने लग गए। और इसके अंदर मान तुंगाचार की पंक्तियों को हमने संजोया है, पृथ्वी के सुंदर परमाणु सब तुझ में ही समा गए, केवल उतने ही अणु आकर तेरी रचना बना गए, इसीलिए तुझ सम सुंदर नहीं कोई नर सुंदर होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। अर्थात तावंत एव खलु ते प्यणवा प्रतिभ्याम यत्ते समानम परम नई रूपमस्ति। अर्थात हे भगवान, पृथ्वी पर केवल उतने ही परमाणु थे जिनसे आपकी रचना बन गई और कोई परमाणु किसी के पास नहीं गए, इसीलिए आपके समान कोई सुंदर इस धरती पर नहीं है। ऐसे भगवान का सुमिरन करने मात्र से, उनकी कथा भी सुन लेने से महान पुण्य का बंध होता है। तो ये हमने भगवान ऋषभ देव के अष्टम अवतार का केवल मंगलाचरण किया है। आज हमारे बीच में न्यू जर्सी अमेरिका से सनत भाई शाह और मीना बेन शाह, सुरेंद्र भाई शाह, भावना बेन शाह, चिंतामणि बेन शाह परिवार सहित आए हैं, हमें डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने बताया, आपके भगत है ना। और जब न्यू जर्सी गए डॉक्टर जीवन प्रकाश जी, अभी दस लक्षण पर्व में आप सबने बहुत ही रुचि से इनके प्रवचनों को सुना है। पूज्य माता जी के स्वास्थ्य के कारण इनको बीच में आना पड़ा था, लेकिन आप सब ज्ञानमति माता जी ने सन 2000 में इस ग्रंथ को संस्कृत में लिखा। आदि पुराण आदि अनेक ग्रंथों के आधार से भगवान ऋषभ देव के 10 भाव पूर्व का इसके अंदर चित्रण किया है। तमाम प्रथमान योग के साथ साथ करणान योग, जैन भूगोल भी इसके अंदर दिया है। उसकी व्याख्यान माला चल रही थी, बीच में थोड़ा सा व्यवधान आया। आज मैं आपको अष्टम अवतार के रूप में, यानी भगवान ऋषभ देव ने राजा महाबल की पर्याय से 10 भाव पूर्व से मोक्ष जाने की तैयारी में अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ किया था। प्रथम भाव राजा महाबल का, दूसरा भाव ललितांग का, तीसरा भाव राजा वज्रजंग का और चौथा भाव देवता के रूप में उन्होंने निकाला। राजा वज्रजंग के बाद भोग भूमि के आर्य हुए। पांचवें भाव में श्रीधर देव की पर्याय को प्राप्त किया। छठे भाव में
राजा स्मिति कुमार बने और उन्होंने पहले क्षुल्लक दीक्षा लेकर पुनः मुनि दीक्षा लेकर के और आगे जा करके वो सातवें भाव में अच्युतेंद्र यानी 16वें स्वर्ग के इंद्र बन गए। अब वहां से अब हम आठवें भाव में आते हैं यानी ऋषभदेव से तीसरा भाव और महाबल से लेकर के आठवां भाव यानी वह अच्युतेंद्र अपनी 22 सागर की आयु को पूर्ण करके और सुख पूर्वक सम्यक दर्शन के साथ अपने शरीर का त्याग करके पुनः आकर के मध्यलोक में विदेह क्षेत्र के पुष्कलावती देश में पुंडरीकिणी नगरी के राजा वज्रसेन की महारानी श्रीकांता के गर्भ से वज्रनाभि हो गए, वज्रनाभि नाम के पुत्र हो गए। कालांतर में जाकर ये वज्रनाभि चक्रवर्ती बनते हैं यानी इनके पिता वज्रसेन ने दीक्षा धारण कर ली और वज्रनाभि को राजा बना दिया। इधर वज्रसेन को मुनिराज की अवस्था में केवल ज्ञान हो जाता है और इधर वज्रनाभि के आयुशाला में चक्र रत्न उत्पन्न होता है जैसे भरत भगवान का सुना है। पहले भी अपने पिता तीन लोक के नाथ भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक में जाकर वहां पूजा करते हैं, पुनः आकर के चक्र रत्न का सत्कार करके और चक्र रत्न को लेकर के छेखंड की वसुधा को जीतने के लिए चलते हैं और चक्रवर्ती बनकर के वापिस अपनी नगरी में आते हैं। समय बीतता जाता है फिर वज्रनाभि चक्रवर्ती ने भी छेखंड के राज्य को छोड़ करके और जाकर अपने पिता के समोह शरण में ही जैनेश्वरी दीक्षा धारण की। महापुरुषों का यही जीवन रहा है कि जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा, वे कर्म में भी सूरवीर रहते थे और जब उसको छोड़ देते थे राज्य को मुनि बन जाते थे तो उस परिग्रह की ओर उस राज्य की ओर उस संपत्ति की ओर उस महल की ओर कभी भी पीछे मुड़ करके देखते भी नहीं थे। वज्रनाभि चक्रवर्ती ने भी यही किया और भगवान के अपने पिता के समोह शरण में भी उन्होंने तीनों लोकों में क्षोभ उत्पन्न करने वाली तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। मैं स्वाध्याय कर रही थी इस ऋषभदेव चरितम का, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है ज्ञानमती माता ने, 16 भावनाओं का खूब अच्छा चित्रण किया है, 6 खंड की वसुधा को जीता, उन 6 खंडों के राज्य के बारे में बताया कि किस किस तरह से उन्होंने 6 खंड पर विजय प्राप्त की। तो इस ग्रंथ को आपको अवश्य में पढ़ना है और ऋषभदेव चरितम को अपने अपने मंदिरों में भी रखिए, एक बार पढ़े दो बार पढ़े जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार ही नया नया प्रकरण आ जाता है क्योंकि आदि पुराण बहुत मोटा है, 2 भाग हैं और उत्तर पुराण भी पढ़े 3 भाग हो जाते हैं। तो इस ऋषभदेव चरितम के अंदर आपको भगवान ऋषभदेव का खूब अच्छा वर्णन प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का इस भाव में बंद कर लिया और आगे जाकर के फिर वे सर्वार्थ सिद्धि के अहमिंद्र के रूप में पहुंच जाते हैं, माने अब तो भगवान बनने के ही निकट में हैं। देवता का वैभव इंद्र का वैभव भी उनको लुभा नहीं पाता है लेकिन ये भाव है, ये भावावली है उनकी कि इससे हम जानते हैं कि किस प्रकार से ये जीव जब उत्थान करना प्रारंभ करता है तो आगे जाकर के हमेशा उत्थान ही उत्थान होता चला जाता है और अच्छे अच्छे शुभ निमित्तों के कारण वह मोक्ष मार्ग में चलकर साक्षात मोक्ष को कैसे प्राप्त करता है इस बात को जानना है तो आपको प्रथमानुयोग के ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। आपको जानना होगा कि ये हमारे आदर्श हुए हैं और हम आज किस प्रकार से संसार में रहकर, मैं कहती हूँ जो दाम्पत्य जीवन के अंदर हैं उन्हें भी इन महापुरुषों के जीवन से कुछ सीखना है कि ह्यूमन लाइफ इज ए गिफ्ट एक्सेप्टेड ह्यूमन लाइफ इज ए लव इंजॉय, लेकिन इंजॉय कैसा करें, केवल इंद्रिय विषय भोगों का नहीं आध्यात्मिक आनंद भी लें। इन गुरुओं के पास जाकर के और अपने दाम्पत्य जीवन की सफलता का सार पूछें कि हमारा जीवन कैसे आगे सफल हो सकता है। चाहे किसी के 25 साल बीते 50 साल बीते लेकिन वो सब बेकार हो जाते हैं अगर आगे सम्यक दर्शन दृढ़ कर लेते हैं। आज पाटनी परिवार ने आकर के सुंदर विधान किया, पंच परमेष्ठियों का स्मरण किया, अपने पुत्र और पुत्रवधु को बताया कि हमारी प्राचीन गुरु हैं ज्ञानमती माता जी। कलकत्ते के अंदर सन 1963 में इन्होंने चातुर्मास करके और छोटी सी उम्र के अंदर, जब इनकी आयु केवल 28-29 साल की थी, ऐसा ऐतिहासिक चातुर्मास आपके कलकत्ता के हरकचंद सरावगी, अमरचंद पहाड़िया और हमारे पाटनी जी, क्या कल्याण जी पाटनी, सब याद करते थे कि ज्ञानमती माता जी जैसा हमने ज्ञानी साधु नहीं देखा कि कोई भी बात करती है मन से नहीं, प्रूफ के साथ, शास्त्र के प्रमाण के साथ बात करती हैं। ऐसे प्रमाणों को इकट्ठा करके इन्होंने 500 से अधिक जो ग्रंथ लिखे, उसी में मेरी इच्छा हुई कि ऋषभदेव चरितम का रसास्वादन भी आपको कराया जाए। प्रोफेसर टीकम चंद जी, अभी हमने कुछ दिन पहले ही 15-20 दिन पहले अष्ट सहस्री सप्ताह के नाम से अष्ट सहस्री ग्रंथ का कुछ लोगों को स्वाध्याय कराया कि आप जानते जाने संसार में रह करके, मिथ्यात्व में पढ़ करके, गलत गलत सिद्धांत करके हम अपनी आत्मा के साथ कैसे अन्याय कर रहे हैं। तो आत्मा के साथ न्याय करने के लिए ऐसे ग्रंथ को पढ़ना आवश्यक है। और हमें विद्वान ही नहीं मिले, आज अष्टसहस्री को जानने वाले पढ़ने वाले कोई विद्वान नहीं मिल पाए। जो पुराने थे वो सब चले गए, पंडित दरबारी लाल जी कोठिया, पंडित कैलाश चंद, सिद्धांत शास्त्री, ये सब चले गए। तो लेकिन लोगों ने कम से कम ये जाना कि हमारा ईश्वर जो है सृष्टि का कर्ता नहीं है। ऐसी अनेक बातें अष्ट सहस्री के अंदर बताई गई है कि जीव अपने कर्म का कर्ता स्वयं में है। तो भव्यात्माओं, मैं आपको ऋषभदेव चरितम के माध्यम से आत्मा के साथ न्याय करने की बात को बताती हूँ कि गृहस्थ में रह करके भी ये जीव गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करने के पश्चात मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने विवाह नहीं किया केवल वही लोग मोक्ष मार्ग में हैं। सभी लोग जब वैराग्य आ जाए तो कहते हैं जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। सब लोग संसार में ही रहे हैं और संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है। ऐसा कभी नहीं है कि अनादिकाल से कोई जीव मोक्ष ही मोक्ष को जानता हो या मोक्ष में ही रहता हो। जब संसार है तो उसको छोड़ करके ही मोक्ष को प्राप्त करता है। तो भव्यात्माओं, वज्रनाभि चक्रवर्ती इन्हीं की आज वैराग्य भावना पढ़ी जाती है। इविधि राज करियो नर नायक, होगे पूर्ण विशालो, सुख सागर में रमते निरंतर, जाते न जान्यो कालो। काल निकल जाता है पता ही चलता है, तो वहां अपनी काल को सुरक्षित करना है। ऐसे वज्रनाभि चक्रवर्ती, इन्हीं वज्रनाभि चक्रवर्ती जो भगवान ऋषभदेव के जीव थे, कैसे उन्होंने चक्रवर्ती की संपत्ति को छोड़ा और कैसे हम उनके मार्ग का अनुसरण करें, यही इन ग्रंथों के पढ़ने का सार रहता है। तो अब 2 मिनट के लिए मैं चाहूंगी शशि पाटनी, इन्होंने हमें सुबह